मिसेस मुखर्जी की लीड का पीछा करते हुए प्रियल कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच तो गई, लेकिन वहां जाकर वो खुद फंस चुकी थी। उधर दूसरी तरफ निक बच्चों को संभाल रहा था, जबकि आरोही किचन में उनके लिए खाना बना रही थी। प्रियल के न होने की वजह से नील और नियो का मूड उखड़ा हुआ था। निक उनके लिए खाना लेने के लिए आरोही के पास किचन में गया हुआ था। वापस लौटकर उसने देखा कि दोनों बच्चे उदास बैठे थे। गुड़िया, तुम्हें बस अपनी जिद करनी होती है, और यहाँ दोनों बच्चे तुम्हारी वजह से कितने उदास होकर बैठे हैं, निक ने उन्हें उदास देखकर सोचा। नियू मुंह लटकाकर बैठी थी। नील ने नियू को सहलाते हुए कहा, नियू आ जाएगी गुड़िया। लेकिन कब आएगी? उन्होंने कहा था ना कि वो जल्दी ही आ जाएगी। दोनों बच्चों को उदास देखकर निक उनके पास आया और उन्हें गले लगाकर कहा, तुम दोनों को याद आ रही है उसकी? नियू बोली, हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। निक ने कहा, अच्छा तुम दोनों ये खाओ, तब तक मैं गुड़िया से बात करके आता हूँ। निक ने चिल्लाते हुए आरोही को आवाज दी, आरोही आरोही अंदर आओगी प्लीज? निक की आवाज सुनकर आरोही जल्दी से उनके पास गई। आरोही ने पूछा, हाँ सर बोलिए। निक ने कहा, तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखो, मैं अभी प्रियल से बात करके आता हूँ। बच्चों को आरोही के पास छोड़कर निक दूसरे रूम में आ गया, जहाँ उसने प्रियल को कॉल किया, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ रीच बता रहा था। इससे पहले कि वो किसी और को कॉल करता, उसके पास अंकित का कॉल आ गया। निक ने कहा, थैंक गॉड अंकित तूने कॉल कर लिया, मैं बस तुझे कॉल करने वाला था। तुम और मुझे कॉल करने वाले थे? लाइक सीरियसली? जब से तुम दोनों मिले हो, तुम तो सब कुछ भूल ही गए हो। मिस्टर मुखर्जी से भी सुना था मैंने कि तुम मिशन भी क्विट करना चाहते हो, अंकित ने पूछा। निक ने कहा, हाँ मैं तो क्विट करना चाहता हूँ, लेकिन गुड़िया है कि मान ही नहीं रही। दोनों बच्चे उसे बहुत मिस कर रहे हैं। तुम दोनों को कितना टाइम लगेगा वापस आने में? उसकी बात सुनकर अंकित ने हैरान होकर कहा, वॉट, प्रियल अभी तक घर नहीं आई? लेकिन निक, मैं उसके साथ नहीं गया था। मिस्टर मुखर्जी ने भी उसे साफ मना किया था कि वो उस जगह पर अकेले ना जाए। तुम परेशान मत हो, वो बस पहुंचती ही होगी। नाउ डोंट टेल मी कि प्रियल हमेशा की तरह जिद करके वहां पर अकेली चली गई है। देख, अब मेरे पास इन सब बातों का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम अभी मुझे उस जगह की लोकेशन सेंड करो। ओके, मैं लोकेशन भेजता हूँ, साथ ही मिस्टर मुखर्जी से वहाँ की सिचुएशन के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करता हूँ, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अंकित ने उसी वक्त निक को उस जगह की लोकेशन भेज दी, साथ ही उसने मिस्टर मुखर्जी से प्रियल से आखिरी बार जो बात हुई थी उसके बारे में भी जानकारी ली। निक अंकित से बात कर दौड़ते हुए आरोही के पास गया। निक ने हड़बड़ाते हुए कहा, आरोही मेरे पास ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बस इतना ही कहूँगा कि नील और नियू का ख्याल रखना। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? आरोही ने पूछा। नील ने उसे भी जाता देखकर उदास होकर पूछा, अब आप भी जा रहे हो निक? नियू ने कहा, पहले गुड़िया और अब आप। हाँ बस ये समझ लो कि तुम्हारी गुड़िया को ही लेने जा रहा हूँ, तुम बस अपनी आरोही मासी के साथ रहना और खाना खाकर सो जाना, निक ने कहा। नील बोला, हम आप दोनों के आने के बाद ही सोएंगे। निक ने दोनों बच्चों को गले लगाया और जल्दी से अंकित की सेंड की हुई लोकेशन पर पहुंचा। प्रियल उन लड़कियों के साथ वहां पर कैद थी, जबकि मिस्टर मुखर्जी की भेजी हुई बैकअप टीम अभी भी नहीं पहुंच पाई थी। दूसरी तरफ धनुष और श्याम को किसी वजह से उस जगह से निकलने में देर हो रही थी। निक वहां अकेले ही पहुंच चुका था। निक ने इधर उधर देखा, वहां कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तो इस ट्रक और एक बंद पड़ी बिल्डिंग के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा, अंकित ने लोकेशन तो यहीं सेंड की थी। तभी अंकित भी वहां पहुंच चुका था। उसने देखा कि निक वहां मौजूद है, वो जल्दी से उसके पास गया। तो तुम यहां पहुंच चुके हो? मैंने मिस्टर मुखर्जी को बोलकर बैकअप रेडी करवा लिया है, लेकिन उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक चीजें हमें ही संभालनी होंगी, निक ने कहा। थैंक गॉड तुम जल्दी ही आ गए, लेकिन यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा तो ढूंढ लेंगे, तुम नीचे गोदाम में जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज उसी वक्त कॉल कर देना। अंकित बिल्डिंग के ऊपर की तरफ गया, जबकि निक सीढ़ियां उतरकर अंडरग्राउंड की तरफ गया, तो वहां एक बड़ा सा बंद हॉल था जिसके बाहर कोल्ड स्टोरेज का होर्डिंग लगा हुआ था। निक ने कहा, किसी को भी किडनैप करके रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज से परफेक्ट जगह कोई हो ही नहीं सकती। एक तो वहां जाने की इजाजत जल्दी से किसी को नहीं है, और अगर मिलती भी है और बिना प्रिकॉशंस के अंदर कोई जा नहीं सकता। लेकिन इस स्टोरेज के बाहर गंदगी से पता चल रहा है कि ये बंद पड़ा है, जरूर अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो हॉल कोल्ड स्टोरेज होने की वजह से वहां पर कोई भी खिड़की नहीं थी। निक दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो बंद था। निक ने सोचा, मेरे पास उनके बाहर आने का वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मन तो कर रहा है इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं, हमेशा अपनी जिद चलाती है, बच्चों का भी नहीं सोचा, नील और नियू भी आरोही के साथ अकेले होंगे। निक खुद से बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी किसी काम से बाहर की तरफ गया। वो धनुष था, जो अंदर नेटवर्क ना होने की वजह से अपने बॉस को कॉल करने के लिए बाहर आया था। धनुष के वहां से हटते ही निक बिना टाइम वेस्ट किए अंदर चला गया। वहां बहुत सारी अलमारियां और रैक बनाई हुई थीं, जहां शायद सामान रखा जाता होगा। उस समय वो स्टोरेज बिल्कुल खाली पड़ा था। वहां से थोड़ी दूरी आगे जमीन पर श्याम लेटा हुआ था और उसके आसपास 3-4 शराब की बोतलें और कुछ खाने का सामान पड़ा था। शराब पीने में व्यस्त होने के कारण उसका ध्यान इधर उधर नहीं था। इसका फायदा उठाकर निक उन अलमारियों को पीछे पीछे छिपते हुए आगे बढ़ा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ लड़कियों के साथ प्रियल भी जमीन पर बैठी हुई थी। उनके हाथ और पैर बांधे हुए थे और मुंह पर टेप लगाया हुआ था। निक को देखकर प्रियल की आंखों में चमक आ गई। उसे उस हालत में देखकर निक ने सोचा, मैं कैसे भूल सकता हूँ मिस शर्मा कि आप बिना किसी मुसीबत में पड़े मुझे मिल भी कैसे सकती हैं? मन तो कर रहा है कि इन लड़कियों को यहाँ से बचा कर ले जाऊं और आपको तो खुद इन गुंडों के पास छोड़ कर आऊं कि इसे ले जाओ ताकि ये उल्टी सीधी हरकत करना बंद करे। निक अपनी सोच में गुम था कि प्रियल ने उसे इशारे से खोलने के लिए कहा। निक ने कहा धीमी आवाज में, ओ सॉरी, मैं भूल गया था कि आप लोगों को खोलना भी है, लेकिन प्लीज कोई भी बिल्कुल भी शोर मत करना। निक ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, जबकि आधी बात उसने इशारे से ही समझाई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कोल्ड स्टोरेज खाली पड़ा है। अगर उसने थोड़ा भी जोर से बोला तो उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज जाएगी। निक ने प्रियल को छोड़कर उन सबको खोल दिया। निक ने प्रियल के पास बैठकर धीरे से कहा, तुम ऐसे ही ठीक हो, तुम पर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि, खैर छोड़ो, तुम्हारा मुंह बंद ही ठीक है। प्रियल ने अपने बांधे हुए पैरों से निक को जोर से मारा। निक ने कहा, अब तो बिल्कुल नहीं खोलने वाला, चाहे इसके लिए तुम्हें ऐसे ही बंधी हुई हालत में मुझे यहाँ से उठा कर ले जाना पड़े तो वो भी मुझे मंजूर होगा मिस शर्मा, इससे कम से कम तुम्हारा मुंह तो बंद रहेगा। अब तो तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में आ ही गया होगा कि मैं इस मिशन से क्विट करना चाहता हूँ। वहाँ बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर फंसी हुई हो, ये तो मैं आ गया, वरना पता नहीं ये लोग तुम्हें कहाँ ले जाते। रुको, अंकित से पूछता हूँ कि बैकअप कब तक आएगा।
निक ने अंकित को मैसेज करके बताया कि उसे प्रियल मिल गई और उसके साथ और भी लड़कियां यहाँ कोल्ड स्टोरेज में बंद मिली थीं, जिन्हें शायद ये लोग किडनैप करके कहीं और ले जाने वाले थे। निक का मैसेज मिलते ही अंकित ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ आया। बाहर मिस्टर मुखर्जी द्वारा भेजी हुई बैकअप भी पहुंच चुकी थी। वैसे भी श्याम और धनुष अकेले और नशे में होने की वजह से इतने लोगों का सामना नहीं कर सकते थे, उन्हें मात देना बहुत आसान था। निक ने अंकित को बैकअप सहित बाहर रुकने को बोला। वो चलकर वापस श्याम और धनुष के पास गया। धनुष ने उसे नशे की हालत में पूछा, तो कौन है बे और अंदर कैसे आया? अगर तू पुलिस वाला हुआ ना तो आज यहां से जिंदा बचकर जाने नहीं देंगे तुझे। निक ने कहा, ओ रियली, लेट्स सी क्या होता है। श्याम ने बंदूक निकालकर कहा, लगता है तुम लोग छुपकर जासूसी वाला काम बंद नहीं करोगे, एक दो मर गए तभी तुम लोगों को अकल आएगी। शाम निक पर गोली चलाने ही वाला था, उससे पहले निक ने उसके पैर पर शूट कर दिया। गोली की आवाज सुनकर अंकित 2-3 लोगों के साथ अंदर आ गया और उन लड़कियों को सबसे पहले वहां से निकाला। शाम तो पहले ही घायल हो चुका था तो वो वहीं जमीन पर पड़ा था, वहीं धनुष को पुलिस वहां से ले जा चुकी थी। शाम के लिए एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस के साथ शाम को भी वहां से ले जाया गया। अंकित ने पूछा, निक प्रियल कहाँ है? निक ने बताया, वो अंदर की तरफ है। अंकित, तुम बैकअप टीम के साथ जाओ, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है, उन सबको सुरक्षित जगह पहुंचाकर प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। ओके, लेकिन तुम दोनों भी घर चले जाना, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। निक ने हामी भरी। अंकित और लड़कियों के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। अब उस जगह पर सिर्फ निक और प्रियल ही बचे थे। निक प्रियल के पास गया और उसे जाकर खोलने लगा। निक ने प्रियल को खोलते हुए कहा, तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकत कैसे कर लेती हो गुड़िया? अगर आज मैं नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या होता? एक बार सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे बच्चों पर क्या बीतती? प्रियल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपने मुझे खोला क्यों नहीं? मेरा दम घुट रहा था, कितने बुरे हो आप। प्रियल को सही सलामत देखकर निक थोड़ा बहुत शांत हुआ और उसे गले लगा दिया। हाँ, बहुत बुरा हूँ मैं, लेकिन तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। तुम्हें एक बार मुझे बता देना चाहिए था कि अंकित यहाँ पर नहीं आ रहा। गुड़िया, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। प्रियल ने निक को परेशान करने के लिए कहा, मेरी जान तो बिल्कुल नहीं जाती, बस ये लोग मुझे कहीं पर बेच देते। पता है उन्होंने क्या कहा था? कि मार्केट में मेरी बहुत डिमांड है, बस आपको ही मेरी वैल्यू नहीं है। चलो अब दूर हटिए। निक ने उससे अलग होकर कहा, ये बकवास बातें मेरे सामने मत करो वरना फिर से यहीं पर बांध कर चला जाऊंगा। निक और प्रियल अपनी बातों में लगे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब श्याम और धनुष का तीसरा साथी रॉनी वहां आ चुका था। रॉनी चुपके से कोल्ड स्टोरेज के अंदर आया तो उसे वहां पर खून दिखाई दिया और बाहर वो ट्रक भी नहीं था जिसमें उन लड़कियों को लाया गया था। अंदर निक और प्रियल के अलावा और कोई भी ना होने की वजह से वो सब समझ गया कि उसके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ होगा। लगता है पुलिस यहाँ पहुंच चुकी थी। ये लोग अपनी टांग अड़ाना छोड़ेंगे नहीं। अब तो बड़े साहब को मुझे ही सूचना देनी होगी। जरूर इन दोनों की वजह से ही सब कुछ हुआ होगा। अभी तो मैं अकेला हूँ, इसलिए कुछ नहीं कर सकता, वरना इन दोनों को अच्छे से देख लेता, रॉनी ने सोचा। रॉनी वहां से गुस्से में जाने लगा। थोड़ी दूर चलकर उसे पता नहीं क्या सूझा कि वो वापस आया और उसने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद करके बाहर लगी मशीन को चालू कर दिया। अब तो कल सुबह बड़े साहब को तुम दोनों की जमी हुई लाशें दिखाऊंगा, तब शायद उन्हें कुछ खुशी मिल सके। रॉनी वहां से जा चुका था जबकि निक प्रियल को गले लगाकर अभी भी उस स्टोरेज में खड़ा था। तभी अचानक उन दोनों को महसूस हुआ कि हॉल में ठंड पड़ने लगी। प्रियल ने थरथराते हुए कहा, निक क्या मुझे ही ऐसा फील हो रहा है या इस हॉल में सच में ठंड पड़ने लगी है? निक ने कहा, हाँ शायद किसी ने गलती से बाहर लगी मशीन को ऑन कर दिया है। प्रियल तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, ये हॉल एक कोल्ड स्टोरेज है, तुम चलो मेरे साथ इससे पहले कि यहाँ और ठंड हो जाए और हम दोनों ठंड के मारे यहाँ जम जाएं। निक प्रियल का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ लेकर गया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वे दोनों समझ चुके थे कि जरूर किसी ने जानबूझकर उन दोनों को अंदर बंद किया होगा। रॉनी ने स्टोरेज का टेम्परेचर मैक्सिमम कर दिया था जिसकी वजह से बहुत कम समय में वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होने लगी थी। वे दोनों अंदर ठंड के मारे कांपने लगे। निक ने अपनी जैकेट उतारकर प्रियल को दी और कहा, तो ये पहन लो गुड़िया, तुम्हारा फेस रेड हो रहा है। प्रियल बोली, और आप कांप रहे हो निक। अगले ही पल प्रियल के सामने नील और न्यू का चेहरा आने लगा। वो बुरी तरह घबरा गई। निक मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, नील न्यू मुझे उनके पास ले चलो, निक ने कहा। ना नहीं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। निक और प्रियल स्टोरेज के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वे उसे नहीं खोल पा रहे थे। बीते हर पल के साथ वहां ठंड पड़ती जा रही थी।